भक्ति की इस सीरीज में जो हम लोग प्रयास कर रहे हैं, भक्तों का संग और श्रवण, इसी पे हमारा जो है सारा आध्यात्मिक जीवन जो है डिपेंड करता है। और शास्त्रों में कहा गया है कि हमारी सभी सेवाओं का, हमारे जप का जो है जो रिजल्ट है वो है कि हमारी धीरे धीरे कृष्ण नाम में या कृष्ण कथा में रुचि बढ़े। यही हमारे जीवन का लक्ष्य भी होना चाहिए। शुरुआत में हो सकता है कि जिस प्रकार गुरु महाराज भी कई बार बताते हैं कि हमारी जीभा पर जो है छाले हो रखे हैं, और जिसके जीभ पर छाले होते हैं उसको किसी भी चीज़ का जो है स्वाद पता नहीं चलता कि क्या खा रहा क्या नहीं खा रहा, लेकिन बाद में धीरे धीरे ठीक होने पर उसको उन सब चीज़ स्वाद प्राप्त होता है। स्टार्टिंग में हो सकता है कि व्यक्ति को कृष्ण के नाम में या कृष्ण की सेवाओं में या फिर कृष्ण की कथा में वो रुचि ना हो जो कि होनी चाहिए या जिस प्रकार की शास्त्र हमसे अपेक्षा करते हैं, लेकिन इन्हीं सब साधना भक्ति के अंगों का पालन करते करते एक दिन ऐसा आ जाता है कि जिस दिन हम लोग उस प्लेटफॉर्म को पहुँच, इतनी जल्दी तो नहीं पहुँचेंगे लेकिन उस मंजिल को फील कर सकते हैं, रियलाइज कर सकते हैं कि ऐसा कुछ हो सकता है हमारे साथ भी, क्योंकि इसीलिए और लोग भी लगे हुए। तो जनरली जिस प्रकार एक व्यक्ति एक मंजिल से दूसरी मंजिल पर पहुंचना चाहता है तो उसके आगे बढ़ने का केवल एक ही मोटिवेशन होता है, क्योंकि उसके आगे कोई व्यक्ति चल रहा है और उसको देखकर, उन माइलस्टोन्स को देखकर, उस पर पढ़कर जो रास्ते में लिखा होता है, तो उसका उत्साह बढ़ता रहता है कि हाँ चलना है। उसी तरह भक्तिमय जीवन में भी हम लोगों को जो है इसी प्रकार भक्तों का संग काम आता है, या वो सब रियलाइजेशन जो भक्तों ने शेयर की हैं ग्रंथों के माध्यम से या फिर अपने एक्सपीरियंसेस से, वो सब हमको जब दिखाई देते हैं तो हमारे लिए भी एक आशा का किरण रहती है कि हाँ हमें भी आगे बढ़ना है। नहीं तो जिस एनवायरनमेंट में ज़्यादातर हम लोग रहते हैं, क्योंकि खासकर जो भक्त लोग, सभी लोग हम लोग बाहर जॉब भी करते हैं, बिजनेस भी करते हैं, और सुबह शाम हम लोगों को ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना होता ही है जिन लोगों का भक्ति से कोई लेना देना नहीं, और ऐसे लोगों की मात्रा ज़्यादा होती है। क्योंकि यहाँ पर हम जो लोग बैठे हैं, हम ये भी बोल सकते हैं कि यहाँ तो भक्तों का संघ है, लेकिन यही संघ बाहर के समाज में हमें नहीं मिलता, क्योंकि यहाँ पर हर व्यक्ति की फील्ड अलग है, बिजनेस अलग है, अपना अपार्टमेंट अलग है, है ना, कॉलोनी अलग है, और वहाँ पर उनको हर तरह के लोगों से डील करना होता है। इवन कई बार घरों में भी हम लोगों को वो वातावरण नहीं प्राप्त होता। तो ऐसे इतने नेगेटिव वातावरण में, इतने ज़्यादा दूषित वातावरण में अपनी चेतना को ठीक प्रकार कैसे बनाए रखें, ये एक सबसे बड़ा जो है स्ट्रगल कहलाता है। तो हम लोग ज़्यादातर इसी प्रकार के एनवायरनमेंट से घिरे रहते हैं, और अगर हम लोग इस प्रकार के एनवायरनमेंट से घिरे हुए हैं, जैसे बचपन में हम लोग कथा पढ़ते थे स्कूल्स में शायद कहीं, कि कुछ बच्चे जब बीमार होते थे तो बच्चों ने बोला कि हाँ बीमार हैं, डॉक्टर के पास गए, दवाइयाँ खानी पड़ रही हैं और बड़े कराह रहे हैं, समस्या क्या है, क्यों बीमार हैं, तो पता चला किसी ने कहानी सुनाई कि जो आप ये बीमार हो रहे हो इसका कारण है इसके पीछे कि आप जो हैं अपने कमरे की, अपने आसपास की सफाई ठीक ढंग से नहीं करते, और जो ये बीमारी रूपी पिशाची है इसके लिए बड़ा अनुकूल वातावरण है वो जगह जहां पर की गंदगी हो। तो अगर आप इससे लड़ना चाहते हो, इससे बचना चाहते हो, तो क्या करना पड़ेगा, आपको इसका जो एनवायरमेंट, इसका जो फेवरेबल एनवायरमेंट है उसको खत्म करना पड़ेगा। तो बच्चे लोग क्या करते हैं, सफाई शुरू करते हैं और दूसरे चित्र में दिखाते हैं कि जो बीमारी रूपी पिशाची है उसको बड़ी तकलीफ हो रही है। क्या तकलीफ हो रही है, उसका रहना मुश्किल हो रहा है कि सब लोग इकट्ठे हो गए हैं, एक हो गए हैं, और अब वो सच में घर से गंद निकाल रहे हैं सारा। तो फिर जब इस तरह शुरू होता है तो बच्चों को सिम्टम्स देखते हैं किस चीज़ के, कि उनकी चेतना में फर्क पड़ता है, क्या कि सफाई होने से, सफाई दिखने से मन बड़ा ठीक ठीक रहता है, अच्छा लगता है आपको, और जब पूरी सफाई हो जाती है तो उनको बहुत अच्छा लगता है, और धीरे धीरे फिर बीमारी का भी जो है उनके उसमें गिरावट आती है, और जो बीमारी जो भी पिशाची है वो भी भाग जाती है। कौन सा घर ढूंढती है वो, जहां पर अब वो गंद इकट्ठा हो रहा है, जो और व्यक्ति कर रहा है। तो इस छोटे से एग्जाम्पल हम ये समझ सकते हैं कि जब जब हम लोग भक्ति, जैसे भक्ति के जो नियम है या इन नियमों में जब हमारे जीवन में गिरावट आती है तो समझ लीजिए कि माया रूपी पिशाची का हम लोग घेरे में जा रहे हैं, और इसको वातावरण चाहिए ऐसा तमोगुनी वातावरण या रजोगुनी वातावरण, उसमें बहुत आराम से फलती फूलती है। और ज्यादातर तमोगुनी और रजोगुनी का समय हम जानते हैं कि 9 बजे के बाद रजोगुन शुरू हो जाता है और उसके संध्या काल के बाद तमोगुन शुरू हो जाता है। तो ऐसे वातावरण में जब लोग हम लोगों के साथ उठते हैं बैठते हैं और हमारे चेतना में जब इसका फर्क पड़ता है इन गुणों का, तो हम खुद देख सकते हैं कि कई बार जब मॉर्निंग में व्यक्ति उठता है तो बहुत शांत रहता है, बहुत पीसफुल रहता है, भक्ति में क्रिया करने में उसका आकर्षण रहता है, लेकिन अचानक 8-10 बजे के बाद उसके अंदर रजोगुण की वृद्धि होना शुरू होती है और उस रजोगुण के तहत उसका दिमाग थोड़ा तेज चलना शुरू हो जाता है। और जब दिमाग तेज चलता है तो उसको फिर अपने सारे प्रोजेक्ट याद आते हैं और प्लानिंग्स याद आती है और उनको क्रियान्वित करने के लिए वो सुबह से लेकर शाम तक भागता है। थकने के बाद शाम को फिर धीरे धीरे वो तमोगुण की गहराई में जाना शुरू करता है और तमोगुण उसको आकर्षित करता है उन कार्यों के लिए जो कि शास्त्र के विपरीत है। लेकिन भक्तों के जीवन में जब वो लोग अपने इस प्रकार की साधना, देखिए हर भक्त को चाहिए कि उसकी मॉर्निंग साधना बड़ी स्ट्रांग, क्योंकि मॉर्निंग साधना का मतलब है, जैसे मैंने कुछ भक्तों से बात करी तो मैं बड़ा खुश भी हुआ, क्योंकि कई भक्त ऐसे हैं जिन भक्तों की सच में घर में बैठकर भी मॉर्निंग साधना बहुत अच्छी है, डीटी वर्शिप भी है, पूरा मॉर्निंग प्रोग्राम करते हैं, गुरु पूजा तक गाते हैं, मंगला आरती भी गाते हैं, बैठकर जब भी करते हैं। कई लेडीज का मैंने देखा माता जी का कि उनका भी स्ट्रांग प्रोग्राम है, तो मुझे बड़ी खुशी हुई, मुझे लगा कि अब तो जब मंदिर जब बन जाए, वैसे तो अभी चल रहा है लेकिन शायद ये लोग बनने का इंतजार कर रहे हैं ताकि फिर कल को सब लोग इकट्ठे मंगला आरती दे सकें, इकट्ठे जप कर सकें, इकट्ठा सब कुछ कर सकें, लेकिन तब तक का इंतजार ना करके अगर हम लोग अभी से ही मंगला आरती इत्यादि आने का प्रयास करें और मॉर्निंग साधना पर जिसपे इतना एम्फोसिस किया है कि अगर हम लोग भक्ति में जीवन में ये माया रूपी पिशाची को सदैव के लिए धक्का मारना चाहते हैं, प्रयास करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, कम से मॉर्निंग साधना को स्ट्रांग करना पड़ेगा। एक एडवर्टीजमेंट आता था पेप्सोडेंट का कि अगर आप उसको एक बार कर लेते हैं तो 24 घंटे कीटाणु से लड़ता रहता है। तो अगर किसी व्यक्ति का मॉर्निंग का प्रोग्राम अच्छा है, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना, स्नान इत्यादि करना, उसके बाद मंगला आरती उच्च स्वर में गाना, प्लस जप इत्यादि करना, डीटीज वर्शिप करना, गुरु पूजा करना और फिर भागवत श्रवण करना या भागवत का पठन करना, उसके बाद प्रसाद का सेवन करके बाहर निकले, तो वो व्यक्ति, वो भक्त अपने इर्द गिर्द एक ऐसा ऑरा बना लेता है स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन का कि जो सुबह से लेकर शाम तक 24 घंटे तक, वैसे तो जिंदगी में बचाया जा सकता है लेकिन फिर भी जो है माया से उसकी रक्षा करता है। कई बार होता है, हम लोग खुद जानते हैं, देखते हैं कि कई बार भौतिक आकर्षणों से हम लोग बहुत जल्दी आकर्षित हो जाते हैं और कई बार हम लोग भौतिक आकर्षणों के प्रति जब आते हैं या मन जब वो करता है तो जद्दोजहद में लगे रहते हैं कि करें ना करें, हो सकता है नहीं हो सकता, भगवान माफ करना, कृपा करना, लगे रहते हैं, तो रजोगुण में। और कई बार हम लोग जब सात्विक गुण हमारे अंदर अधिक होता है तो जैसे भौतिक आकर्षण किसी भी रूप में दिखता है या होता है तो पहले ही उसके अटैक पर हम लोग उसको इग्नोर कर देते हैं, नहीं चाहिए, नहीं करना, हमारा रास्ता ही नहीं। फील किया किसी ने इस तरह? होता है, तीनों तरह की पोजीशंस आती हैं कि कई बार एक ही प्रकार के आकर्षण से हम इमीडिएटली ग्रस्त हो जाते हैं, उसके अटैक के द्वारा प्रभावित हो जाते हैं, कई बार थोड़ी देर बाद होते हैं और कई बार तो बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। ये सबके जीवन में होता है। और एक इंसिडेंट की बात कर रहा हूं, एक ही प्रकार के सेंस सब्जेक्ट के अट्रैक्शन से बात कर रहा हूं, और कई बार हम बड़े आसानी से बाहर आ जाते हैं उससे। तो इससे हमें समझना चाहिए कि है तीनों गुणों का प्रभाव, और भक्त के द्वारा साधना भक्ति के कठोरता से पालन, क्योंकि धर्म रक्षते रक्षता कहते हैं कि अगर हम लोग धर्म का पालन करते हैं तो धर्म फिर हमारी रक्षा करता है। अगर कोई व्यक्ति सिंसियरली भक्ति के नियमों का पालन कर रहा है, गुरु के द्वारा बताए गए निर्देश का पालन कर रहा है, तो मजाल है कि कोई व्यक्ति उसको या माया का कोई अंग उसको छेड़ सके, क्योंकि धर्म का पालन करने वाले का धर्म ही रक्षा करता है। तो उस स्तर पर आने के लिए हम लोगों को, जैसे कई बार हम बात करते हैं कि कई कई पंडाल प्रोग्राम्स में या कई जगहों पर जो हिंदू संगठन है, कई बार हम बात करते हैं कि हाथ खड़ा करो कितने लोग जो हैं धर्म की रक्षा करेंगे, सारे लोग हाथ खड़ा करते हैं। ऐसे कोई भी हिंदू नहीं होगा या मुस्लिम नहीं होगा या क्रिश्चियन नहीं होगा धर्म की रक्षा के लिए ना आगे। लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या है, इन हाथ खड़ा करने वालों को यह नहीं पता कि धर्म है क्या और ये खुद धर्म का पालन नहीं करते। इनको लगता है कि धर्म का पालन का मतलब कि अगर किसी पंडित पर आक्रमण हो रहा है तो मैं उसको बचाऊं, मंदिर पे या मस्जिद पर आक्रमण हो रहा है तो मैं उसको बचाऊं, ये धर्म की रक्षा है। उसको केवल इतना सा पहाड़ धर्म की रक्षा लगता है। धर्म की रक्षा करने का मतलब है धर्म का पालन करना। अरे अगर 1 करोड़ लोग धर्म की रक्षा करने के लिए तैयार हो गए तो उनसे बात कीजिए कि अरे भाई तुम 16 माला 4 नियमों का पालन करो, तो 1 करोड़ लोग धर्म का पालन करेंगे तो धर्म तो बच गया अपने आप। तो समस्या है या कमजोरी है हमारी कि धर्म के नियमों का सख्ती से पालन करने की। हम सोच भी नहीं सकते जो हमारी साधना भक्ति के जो अंग हैं, प्रभुपाद जी ने इतने सुंदर ढंग से हमें दिए हैं कि हर तरफ से प्रोटेक्शन। रूप गोस्वामी जी ने पंचांग भक्ति की चर्चा की है। आपको पता है पंचांग भक्ति क्या है या कौन कौन से अंग है उसके? हाथ खड़ा करके बोले, भगवान के नामों का जप, ये 64 भक्ति के अंग में 5 मुख्य भक्ति के अंग, पंचांग भक्ति जिसे बोलते हैं, डीटी वर्शिप, वृंदावन मथुरा इत्यादि वास, भागवत श्रवण, कितने हो गए? 5वा भक्तों का सब। तो ये पंचांग भक्ति है, ये सारे प्रकार के भक्ति के अंगों में सबसे ज्यादा क्या है, महत्वपूर्ण है। पंचांग भक्ति में एक है हरिनाम संकीर्तन या जप इत्यादि, दूसरा है भक्तों का संग, तीसरा है भागवत श्रवण, चौथा है मथुरावास, 5वां है डीटी वर्ष। और आप देखिए जो हम लोगों को मॉर्निंग प्रोग्राम दिया गया है ये पंचांग भक्ति का ही पूरा समावेश है। इसमें मंदिर हमारे घर हमारे वृंदावन में वास है, जहां पर कि भागवत श्रवण हो रहा है, भक्तों का संग हो रहा है, डीटी वर्शिप हो रही है। तो मॉर्निंग में डीटी वर्शिप है, हरिनाम कीर्तन होता है, जप इत्यादि होता है, भागवत का श्रवण या पठन होता है, भक्तों के संग में हम ये सारी करते हैं, और हमारा मथुरावास ये वृंदावन ही वैकुंठ ही हमारे ये सब। तो ये प्रभुपाद जी ने इतनी खूबसूरती के साथ सुबह के इन 5 घंटों के 6 घंटों के अंदर हमें पंचांग भक्ति करवा दी। इसलिए मॉर्निंग प्रोग्राम को इसको हमें सबसे ज्यादा तवज्जो दी जाती है, और सबसे अच्छा समय भी वो है, 4 बजे से लेकर 10 बजे तक व्यक्ति प्रसाद तक का भी सेवन कर लेता है और पंचांग भक्ति का पालन कर लेता है। प्रसाद क्यों? क्योंकि प्रसाद बताते हैं, जिसकी प्रसाद की प्रार्थना है क्या है, महाप्रसाद गोविंद नाम ब्रह्म निवास में स्वल्प विश्वास में शरीर अविद्या जाल। ये जो शरीर अविद्या का जाल है उसमें जनेन्द्रियता है काल, ये जो हमारी जनेन्द्रियां हैं काम सुख के लिए हमेशा दौड़ती रहती है। जीवा फैले विषय सागर है, और ये जीवा की वजह से हम इस विषय सागर में फैल गिर जाते हैं हर समय। तार मध्य जीवा, जो जीवा है इनके बीच में सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि इसी से सब कुछ कंट्रोल होता है। लोभ मय सुदुर्मति, इसको जीतना बहुत है, ताकि जीता कठिन संसार है, लेकिन कृष्ण बहुत दयामय है, इन्होंने अपनी कृपा प्रसाद के रूप में हमारे लिए छोड़ दी। स्व प्रसाद अन्न दिल भाई, तो हमें क्या करना चाहिए, इस प्रसाद का सेवन करना चाहिए, और इस प्रसाद का सेवन करने से हमारे ब्रेन टिश्यूज प्यूरिफाई होंगे, हमारा जीवन पवित्र होगा, और उससे हम लोग उन्मुख होंगे भक्ति की ओर, मुक्ति की ओर। तो इसलिए प्रसाद भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए सुबह प्रसाद करा देते हैं हर मंदिर। तो ये पंचांग भक्ति का अंग है, ये मॉर्निंग में ही हो जाता है, इसलिए अगर इनके प्रति हम सीरियस हैं और पूरा विधिवत रूप से कर रहे हैं मॉर्निंग में, तो निश्चित रूप से धर्म फिर हमारी रक्षा करेगा। और जिन भक्तों का मॉर्निंग प्रोग्राम स्ट्रांग है, जो लोग ये सब कर रहे हैं भक्तों के संग में कर रहे हैं, ध्यान रखने वाली बात, क्योंकि कई बार हमने देखा कोई व्यक्ति चार अंगों का पालन कर रहा है लेकिन भक्तों का संग नहीं कर रहा, तो भी दिक्कत होती है। ये चार बढ़ता है भक्ति में आगे, लेकिन कई बार अगर इधर उधर हो गया तो कोई रोकने वाला नहीं, कोई समझाने वाला नहीं, कोई बताने वाला नहीं, तो कहीं का कहीं पहुंच जाता है। तो भक्तों के संग होना चाहिए। लेकिन भक्तों के संग में जो समस्या होती है वो क्या है? भौतिक बद्ध जीव में, बद्ध जीवन में, बद्ध जीव के अंदर सबसे बड़ी अवगुण है इसका, वो जो है जिसे दूसरे शब्दों में जैसे बोलते हैं लॉर्डिंग ओवर या प्रभुत्व जमाने वाला। दूसरा शब्द है कि वो कभी भी, क्योंकि अहंकार इतना गहरा है, अहंकार की जड़ इतनी गहरी है अपने आप को शरीर मानने की, वो शरीर मानकर अपने आप को सब में सुपीरियर देखने की, और फिर दूसरों के अंदर अवगुण देखने की। क्योंकि जब व्यक्ति अपने को सुपीरियर देखना चाहता है तो दूसरे को इंफीरियर देखेगा, और ये जहन में इस तरह घुस चुका है हमारे, इतना गहरा घुस चुका है कि व्यक्ति बाहर नहीं निकल पाता इस थॉट से, चाहे वो सुंदरता के रूप में हो, क्वालिफिकेशन के रूप में हो, सेवाओं के रूप में भी हो। मैं आज एक भक्त से मंदिर में बात कर रहा था कि जो नियोफाइट डिवोटीज होते हैं, हम सब नियोफाइट ही वैसे तो, बट नियोफाइट में भी एडवांसमेंट तीन कैटेगरी होती है, शायद पहली से दूसरी में होंगे काइंड ऑफ, या तीसरी में होंगे, या कोई और भी उन्नत होंगे। तो मैं बात कर रहा था कि जो भक्त हैं वो सेवा चाहते हैं, बट उस सेवा के पीछे इंटेंशन क्या होती है? ज्यादातर पूजा लाभ प्रतिष्ठा की, सेवा के पीछे। और जिन लोगों की जहां पर देखिए, यहां पर तो क्या है ना, हमारे इस एनवायरमेंट में भक्त लोग ज्यादा सेवा करना चाहते हैं, कई जगहों पे ऐसे जहां भक्त लोग नहीं है और वहां पर भी इतने बड़े बड़े प्रोग्राम करने होते हैं, तो वहां पर जब भक्तों को सेवा दी जाती है तो वही सेवा उसके लिए, वो सेवा को क्या फील करता है, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है मेरा, ये भी दे दी, ये भी दे दी, ये भी दे दी, इतनी मैं नहीं करता। सर करे बात, तो दोनों तरह से है। न्यूफाइड स्टेज में एक व्यक्ति सेवा के लिए तड़प रहा है लेकिन उद्देश्य पीछे कुछ हो रहा है, और जिसके पास ज्यादा सेवा है उसकी भी, वो भी टेंशन में कि मेरे पास इतनी क्यों, मैं क्यों मिलता हूं इनको हमेशा। ये हम लोगों को इसलिए ऐसे ही आए क्योंकि हमने सेवा मांगने वालों में से, लेकिन वहां पर जहां पर सच में ऐसे लोग हैं वो बचते हैं इनसे, मैं नहीं। और कई बार लोग मूवमेंट या आश्रम भी छोड़ देते इन सब चक्रों में। तो कहने का क्या मतलब है कि अगर हम लोग सही चेतना में, देखिए सही चेतना का मतलब क्या है, शुरुआत में हम प्रयास कर सकते हैं क्वालिटीज को इम्बाइब करने की, हाँ मैं ऐसा करूंगा, अब से ऐसा करूंगा, अब ये चीजें मैं नहीं करूंगा, ठीक करने की कोशिश करूंगा, लेकिन कुछ समय आगे भागते हैं, कुछ दौड़ते हैं, फिर छूट जाते हैं, फिर पीछे रह जाते हैं, फिर प्रयास करते हैं उन चीजों को करने का, फिर पीछे रह जाते हैं, नहीं हो पाती। लेकिन अगर हाँ हम लोग पूरी तरह डिटरमाइंड हैं अपनी इस मॉर्निंग साधना को लेकर, देखिए मॉर्निंग साधना में सबसे बड़ी हेल्पफुल चीजें क्या हैं आपको मालूम? मॉर्निंग प्रोग्राम अच्छा करने के क्या तरीके हैं? सबसे पहली बात कि शाम को समय से सो रहे, दूसरा लिटरेचर पढ़ के सोना, ठीक है, अच्छी चेतना में सोना, अलार्म लगा के सोना, किसी को बोल के सोना कि टाइम से उठा देना, हाँ टाइम से उठना भी जरूरी है। मॉर्निंग प्रोग्राम 10 बजे के बाद नहीं कर सकते आप, वो आफ्टरनून प्रोग्राम है। ये तो हमारे साधना का अंग है। मैं मॉर्निंग प्रोग्राम में अच्छा करने के लिए हेल्पफुल चीजें, लेस ईटिंग, वही शाम के समय जो है ना अधिक प्रसाद पाना, और वो हमारी को निद्रा और लस में ज्यादा धकेलता है। रात को प्रार्थना करना, जिस बिस्तर पे हम सो रहे हैं उस तकिए से, उस बिस्तर से प्रार्थना करना, भाई मेरा, मेरी हेल्प करना, जिसमें जल्दी छोड़ देना, अष्टवक्र की तरह नहीं कि रजाई मुझे छोड़ती नहीं है ना, ये रजाई ने नहीं पकड़ा हुआ आपको, हमने रजाई को पकड़ा हुआ। तो प्रार्थना करके सोना, रात को सोने से पहले पूरी गुरु परंपरा से भगवान से प्रार्थना करें और आप देखेंगे उसका फर्क। जिस समय पर आप बोलेंगे ना उसको भगवान उठा देंगे आपको समय। और फिर मॉर्निंग में उठने के बाद धन्यवाद करना ना भूलें और उस दिन को चलाने की प्रार्थना भी करें। रात को सोने से पहले जब प्रार्थना करें तो दिन में हुए हुए सेवाओं में गलतियां अपराध इत्यादि के लिए माफी भी मांगें। और क्या चीजें हेल्पफुल, जो भक्त लोगों का मॉर्निंग प्रोग्राम अच्छा है ऐसे भक्तों का संग करना, हाँ होता है तभी आ पाते हैं। हो सकता है कि कोई व्यक्ति ना अवेलेबल हो या नहीं आ पाते, हम लोग उस टाइम पर नहीं आ पाते जब वो होता है निपट गए। समझ गया मैं, समझ गया। बट स्टिल कहने का क्या मतलब है, जैसे जो लोग घर पे भी कर रहे हैं अच्छा, क्योंकि जब हम लोग मिलते हैं ना तो हम लोग भक्ति की चर्चा छोड़कर हम दुनिया भर की चर्चा करते हैं। जिन चीजों में हमारा असली इंटरेस्ट होना चाहिए या जिसमें हमको आगे बढ़ना है वो छोड़कर हम दूसरी बातें करते हैं। हमारी अच्छी दोस्ती का केंद्र बिंदु प्रजल्पा होता है, इससे मेरी बड़ी अच्छी पड़ती है, हम तो बहुत अच्छे दोस्त हैं। और उसका केंद्र बिंदु क्या है कि हम लोग दुनिया भर की चर्चा करते हैं भक्ति को छोड़कर। अब देखिए थोड़ा विचार कीजिए कि जिन भक्तों से हमारा मिलना है या उठना बैठना है हम कितनी बार भक्तिमय चर्चा करते हैं। खुद सोचने का प्रयास कीजिए, जिसमें मैं नहीं बोल सकता कि आपको वैसे नहीं, आप खुद सोचिए कि हाँ जिन मेरा सबसे अच्छा दोस्त है जिनसे मेरा ज्यादा उठती बैठ पड़ती है, क्या मैं उसके मिलने पर ये चर्चा करता हूँ, उनसे हेल्प मांगता हूँ या उनसे पूछता हूँ कि आजकल आप क्या पढ़ रहे हो उसमें क्या अच्छा लगा, या मैं क्या पढ़ रहा हूँ मैं आपको एक चीज बताऊँ। प्रजल्पा होता है और बताया जाता है इस प्रकार का जो प्रजल्पा है ये अगर हो सकता है रजोगुण की वजह से हमारा कुछ संबंध कुछ समय के लिए अच्छा भी हो जाए, लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहेगा, हंसी से शुरू होगा लड़ाई तक चला जाएगा और हो ही जाता है, क्योंकि माध्यम या केंद्र बिंदु कृष्ण नहीं है ना, तो जिस भी एक्टिविटी के केंद्र बिंदु कृष्ण नहीं है वो हमें दुख देगा। ये लिख लीजिए बड़े बड़े शब्दों, जिस भी एक्टिविटी के केंद्र बिंदु कृष्ण नहीं है इस भौतिक जगत में वो हमें केवल दुख और परेशानी करेगा। दैट्स, अब देख लीजिए अपने दुखों का कारण अगर कहीं है तो। किसी भी भक्त से कोई ईर्ष्या है कोई द्वेष है उसका केवल केंद्र उसका देख ध्यान देंगे तो पता चलेगा केंद्र बिंदु में कृष्ण नहीं है। अगर केंद्र बिंदु में कृष्ण है तो वहां झगड़ा किस बात का, वहां तो एक दूसरे को आगे बढ़ाने की चर्चा होगी, एक दूसरे की हेल्प करने की चर्चा होगी, दूसरे व्यक्ति के भक्ति में आगे बढ़ने से प्रसन्नता होगी, या ऐसी जगहों पर ऐसी चीजों पर जहां पर कि कुछ एक चीज है और दो लोग लेने वाले हैं तो भक्त क्या बोलेगा पहले इसको। ये वृंदावन का मूड है गोपी भाव, जहां पर भक्त को देकर प्रसन्नता होती है लेकर नहीं, इस भौतिक जगत में लेकर ग्रैब कर हमें प्रसन्नता होती है, दूसरे को नीचा दिखाकर हमें प्रसन्नता होती है, दूसरे के दुखों से जब तक उसकी आह ना सुनाई दे, जब तक वो तड़पता हुआ ना दिखाई दे, जब तक उसको कुछ अगर इस तरह के कष्ट पाते ना देखें तब तक यहां पर क्या होता है, यहां पर सुकून महसूस करता है भक्त से। मतलब ये भक्त की बात भक्त शब्द बोल रहा हूं मैं, बट आप समझ सकते हैं न्यू फाइव डिवोटीज की बात कर, क्यों, क्योंकि अब इसको इसलिए कष्ट ऐसा हो रहा है क्योंकि इसने याद है मुझे एक बार ऐसा बोला था या इसने मेरे प्रति अपराध किया था, ये वही कष्ट है, खुश होते हैं हम। लेकिन भक्तों को चाहिए कि वो ऐसी परिस्थिति में भी अगर जैसे आज बड़े सुंदर लेक्चर में विचित्र कृष्ण ने बात करी थी भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज की, तो लेक्चर के बाद एक व्यक्ति ने खूब उनकी आलोचना करी लेक्चर में, उनके सारे डिसाइपल्स उठा के फेंकना चाहते थे, खबरदार भी रोकते हैं भक्ति सिद्धांत महाराज का, नहीं रुक जाओ और उसके बाद कुछ समय के बाद पता चला कि वही जिसने उल्टा सीधा बोला था वो व्यक्ति अब नहीं रहा, मर गया। तो भक्तों खुशी हुई, अच्छा हुआ, अपराध का फल मिल गया उसको। तो भक्ति सिद्धांत महाराज जी के पास जब खबर पहुंची तो वो बड़े दुखी हुए, इन्हें रोने तक लगे, क्या हुआ। तो भक्तों ने पूछा फिर ऐसा क्यों, उन्होंने कहा कि आपको पता है कि मेरा आज सबसे अच्छा शुभचिंतक चला गया। कहते शुभचिंतक वो तो आपकी आलोचना करता है। कहते मेरी आलोचना जो करता था उसी से तो मैं ठीक रहता था, कुछ गलत भी करता होगा, कुछ उसको दिखता भी होगा, पर मैं हमेशा सजग रहता था कि मैं ऐसा ना करूं क्योंकि इसलिए ऐसा कर रहा हूं, ये बोल रहे हैं इस प्रकार। तो भक्तों की अगर कोई निंदा भी हो रही है, कोई आलोचना भी हो रही है, तो ऐसी परिस्थिति में भी भक्त लोग उस व्यक्ति के बारे में ही भला सोचते हैं। हरिदास ठाकुर बीच बाजार में उनको हंटर पड़ रहे हैं, लेकिन भगवान से एक ही प्रार्थना कर रहे हैं कि हे महाप्रभु, ये नहीं जानते ये क्या गलती कर रहे हैं, इन्हें क्षमा कर दें। सुदर्शन चक्र साथ में घूम रहा है उनको गर्दन काटने के लिए, वो काट ही नहीं पा रहा, क्योंकि जिसको मार पड़ रही है वही बोल रहे हैं उनको माफ कर दो, उनको छोड़ दो। तो कैसे कर सकते हैं। तो भक्तों का हृदय ऐसा होता है, पर दुखा दुखी कह लेते हैं, पर दुखा दुखी मतलब दूसरों के दुख को देकर दुखी होते हैं। क्यों कि किस प्रकार के कष्ट सह रहे हैं, क्यों नहीं एक तुरंत कृष्ण भावना भावित में आ जाते हैं। कष्ट होता है भक्तों को, लेकिन इसलिए होता है क्योंकि क्यों भगवान के जो ये विमुख भक्त हैं ये क्यों नहीं कृष्ण भक्ति में आ रहे, इसलिए दुख होता है। और भौतिकतावादी व्यक्ति को या न्यू फाइड डिवोटीज को होता है क्या, पर सुख दुखी, वो दूसरे के सुख से दुखी है, ये उसकी सबसे बड़ी समस्या है। तो इस प्रकार जीवन ईर्ष्या द्वेष के सर्प से कटे हुए तड़पते हुए व्यक्ति की तरह बीत जाता है। निंदा इत्यादि इतना अधिक अंदर आ जाती है कि वो कहते ना ब्लड के अंदर ही आ जाती है, ना चाहते हुए भी शब्द अच्छा निकल नहीं पाता। तो हम लोगों को चाहिए, हम सब लोग भक्ति के इन जो बेसिक्स हैं, इन बेसिक पर अगर हम लोग पूरी तरह अपने ध्यान को केंद्रित करेंगे ना और अपनी एनर्जी उसमें डालेंगे, जैसे बोलते हैं वेयर फोकस गोज एनर्जी फ्लोज, जहां पर भी हमारा फोकस जाता है किसी चीज को कुछ करने के लिए तो वहीं एनर्जी जाती है। तो उसका मतलब क्या है कि हम फोकस्ड रहें, केंद्रित रहें अपने लक्ष्य की तरफ। और ध्यान रखना जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जब जब हम लोग अपने जीवन के लक्ष्य से या उसमें केंद्रित नहीं रहते तब ही हमारे पास दूसरी समस्या आती है। जैसे एक बड़ा सुंदर सा एग्जांपल देते हैं कि जब एक कुत्ता है उसके सामने को पत्थर फेंको तो कुत्ता पत्थर के पीछे भागता, पत्थर उठा के जाता, बॉल फेंको बॉल के पीछे भागता बॉल उठा के जाता। और उसकी जगह अगर शेर हो और उसको पत्थर मारो तो पत्थर उठाने जाएगा, वो किसको देखता है, फेंकने वाले को घूर रहा होता है। फिर अभी बताता हूं, तो हम लोगों को आने वाली प्रॉब्लम्स को ना देखकर जो प्रॉब्लम्स जहां से आ रही है उस तरफ देखना चाहिए। क्या है प्रॉब्लम, कहां से आ रही है प्रॉब्लम, क्यों आ रही है प्रॉब्लम, बिकॉज वी आर नॉट फोकस्ड, हम लोग पूरी तरह केंद्रित नहीं है कृष्ण पर। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति कृष्ण पर केंद्रित है तो इस प्रकार की आने वाली समस्याओं को भी कृपा मानता है। इस प्रकार की आने वाली समस्याओं को कृपा मानने का मतलब क्या है कि उसको इस संसार में जो भी कष्ट या दुख या तकलीफें आती हैं वो उसे डिस्टर्ब नहीं होता, क्योंकि हमारा सुख हमारी शांति डिपेंड करती है लोगों की शक्लों पर। ये जो व्यक्ति है ना, ये तो मेरे सामने आए ना तो बहुत अच्छे, सुबह सुबह मैंने इसका मुंह देख लिया अब तो पूरा दिन खराब। मतलब हमारे सुख और शांति लोगों की शक्लों पर या फिर लोगों के शब्दों पर डिपेंड करती है। कितना थर्ड क्लास क्राइटेरिया हमारे सुख और दुख का, कि किसी की भी शक्ल देखकर हम दुखी हो जाते हैं या सुखी हो जाते हैं, या कुछ शब्दों को सुनकर हम दुखी या सुखी हो जाते हैं। संडे के लेक्चर में चर्चा की थी हम, थे कोई उसमें, ये बहुत अच्छा चर्चा था। हाँ कि ए टू जेड जो अल्फाबेट है अगर यहां पर हम बोलते हैं तो उससे किसी को कोई दिक्कत नहीं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, इससे किसी को फर्क तो नहीं पड़ा। हाँ बट इसी से एक सेंटेंस बनाते हैं, क्या यू आर स्टूपिड, तो इससे फर्क पड़ता है। और इसी से सेंटेंस बनता है यू आर अ वेरी नाइस पर्सन, हमारे को फर्क पड़ जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए टू जेड से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट उसी वर्ड से जब सेंटेंस बनकर हमारे लिए आते हैं जब, तो हम सुखी या दुखी हो जाते हैं। इसका मतलब कि कोई शब्द जो कि जिसका कोई वैल्यू नहीं है, कोई मतलब नहीं है, उन्हीं शब्दों से हमारे उन पे डिपेंड कर रहा है हमारा सुख और दुख। और फिर पांच तत्वों से बने हुए शरीर से, सड़क पर पड़ी हुई मिट्टी से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलती हुई हवा जो आपको टच करके आ रही है इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, है ना जी, अग्नि जो छाया में जल रही है उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, पानी से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, है ना जी, आकाश जो ओपन है इससे कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है, बट इनके कॉम्बिनेशन से बना हुआ एक शरीर की शक्ल देखकर आपको प्रॉब्लम होती है, उसके कॉम्बिनेशन से आपको प्रॉब्लम हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति के शब्द मुझे चुभते हैं। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति की शक्ल मुझे पसंद है। तो कहने का मतलब है कि इतना गिरे हुए स्तर का आधार है हमारा क्या, सुख और दुख। तो कहने का मतलब क्या है कि भक्तों को इन सब चीजों से ऊपर उठना चाहिए। क्योंकि बहुत लोगों की बहुत नजरें हैं हमारे ऊपर, आस पड़ोस के लोग हमें देखते हैं कि ये व्यक्ति इस्कॉन जाता है, इस व्यक्ति ने धोती कुर्ता पहना है, ये व्यक्ति तिलक धारण करता है और इतना लंबा और ऊपर से माला टांग के घूमता है, सुबह शाम हाथ में रहती है, लेकिन आचरण कैसा है? ये आचरण कई बारी एक्सपोज हो जाते हैं हम लोग घर के झगड़ों के चक्कर में, या जब मंदिर आते हैं तो मंदिर के लफड़ों के चक्कर लाइक हो जाता है। तो ये सब चीजें लोग बहुत ज्यादा नोटिस करते हैं, ये कौन है, कहाँ जाता है, क्या करता है, इतना करने के बाद भी इसकी यह हालत है, इससे बड़े तो हम घर ही अच्छी लोगों का ऐसा भी बोलना है, क्यों घर ही ज्यादा अच्छी। तो हम लोग कंपेनिंग कर रहे हैं लोगों को, क्योंकि हमारा चलता फिरता जो भक्त है वो अपने आप एक टीचिंग सेंटर है, इस्कॉन का मंदिर है पूरा अपने आप में चलता फिरता, उसको देख कर लोग भक्त बनते हैं, उसको देखकर लोगों की क्यूरियोसिटी होती है कि हाँ हम भी जाने, हम भी सीखें कैसे भक्त बनना है। लेकिन हमारा जो सैंपल नेचर है लोगों के सामने जो प्रेजेंट करते हैं, तो कई लोग सामने अच्छा करते भी हैं, हम लोग बहुत अच्छा करते हैं, कई लोग बोलते हैं आप बहुत अच्छे हो, दो चार केस तो गलत हुए मेरे, बट वो दो चार केस इतना प्रचार करेंगे कि न्यूज पेपर भी क्या करता होगा। और हो सकता है कि बाहर सब लोग अभी तक अच्छा है, लेकिन फिर हो सकता है घर में ठीक ना हो, बाहर वैष्णव घर वाले वैष्णव में, तो हर तरह से एक भक्त को एक जेंटलमैन होना चाहिए हर तरह से, द्वंद या उसके बोलते दोगलापन, अंदर कुछ बाहर कुछ, गंगा गए तो गंगा राम, यमुना गए तो यमुना राम। मैं बहुत फ्लेक्सीबल हूं जी, क्या मतलब फ्लेक्सीबल का? फ्लेक्सिबल का मतलब है कि जब मैं उधर जाता हूं तो वैसा हो जाता हूं, जब मैं उधर जाता हूं तो वैसा हो जाता हूं, और ऐसे ही होना चाहिए आजकल के जमाने में, नहीं तो लोग लूट खाएंगे जी आपको। तो मतलब कहीं भगवान नाम की चीज एग्जिस्ट नहीं करती, आई एम सेल्फ मेड मैन, मैं अपने आप में जी लूंगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, मैंने खुद कर दिखाया ऐसे। तो कहने का मतलब क्या है कि इस प्रकार का जीवन है, कुछ जगहों पर तो सक्सेस मिल जाएगी, हो सकता है वाकपटुता के कारण, प्रभाव के कारण, या एनवायरनमेंट में जो भी सिचुएशन है उसके कारण, या हो सकता है परावर्तन के कारण भी कुछ समस्या को सॉल्व कर दें आप, लेकिन लंबे समय तक नहीं चलेगा। और सुख और दुख के चक्कर में या उन आसक्तियों के चक्कर में जिन पर डिपेंड कर रहा है हमारा सुख या दुख या शांति, ये बहुत वो है क्या कहते हैं निकृष्ट चीज़ें हैं। एक जानवर भी इन्हीं चीज़ों से सुखी होता है, इन्हीं चीज़ों से खुश हो जाता है। तो हमारे लोगों का या भक्तों का सुख और दुख या शांति ऐसी चीज़ों पर डिपेंड नहीं करनी चाहिए। हम लोग कृष्ण भावना भावित होना चाह रहे हैं और कृष्ण भावना भावित होने का मतलब है कि भगवान की अनन्य भक्ति करते हुए, अनन्य भक्ति के प्रयास में भी इतना आनंद है, इसलिए बोला स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायतो महत्। सही मार्ग में सही ढंग से थोड़ी सी भी प्रगति हमें महान भय से बचा लेती है। और छठे अध्याय में कह रहे हैं कि अगर प्रगति करकर व्यक्ति गिर गया तो भी जो है उसका कोई नुकसान नहीं हुआ। फिर एक भागवत में श्लोक में कह रहे हैं कि अगर व्यक्ति ने सारे कर्म बहुत अच्छे ढंग से कर लिए, सोसाइटी वाइज सोसाइटी बड़ा नाम है जी, सब लोग पूछते हैं जी, सब कुछ अच्छा कर लिया, यज्ञ दान तपस्या बहुत अच्छी कर ली, सारे रिचुअल अच्छे कर लिए, बेटे बच्चों की शादी भी बहुत अच्छी करा दी, लोगों ने खूब नाम दे दिया, बहुत अच्छा जी, लेकिन भक्ति नहीं की तो उसके सारे एफर्ट जीरो। और हो सकता है कोई व्यक्ति विफल हो जाए फैमिली और सोसाइटी को के स्टैंडर्ड्स को मीट करने में, बट अगर उसने भक्ति अच्छी कर ली तो उसके जितने भी ऋण हैं वो सब चुक जाएंगे। देवताओं के प्रति ऋण, माता पिता के प्रति ऋण, पड़ोसियों के प्रति ऋण, स्वजनों के प्रति ऋण, या और वो काम जो उसको करने थे जो उसे एक्सपेक्ट किए जा रहे थे वो नहीं कर पाया, लोगों का लोन भी ले लिया मान लीजिए उसने लोगों से, वैसे देवताओं का भी लोन हमें चढ़ रहा है सबके ऊपर, और किसी का भी ले लिया उसने, राजा के प्रति भी उसका ऋण, हर एक व्यक्ति के प्रति ऋण उसका। लेकिन अगर वो पूरी तरह से समर्पित हो गया भगवान को तो फिर सारे लोन्स की कोई जरूरत नहीं। अब इसका मतलब ये नहीं कि कल आप बैंक से लोन ले लो, वो जब तुम्हें फुल टाइम हो गया मतलब मैं आप पैसे नहीं दे सकता पैसे ऐसा ना करना। कहने का मतलब क्या है कि वो सब चीजें फिर एक भक्त के लिए मैटर नहीं करती। लेकिन जिस तरह समर्पित भक्त की हम बात कर रहे हैं, जिस कैटेगरी के, वो बनना पड़ेगा। अगर वो नहीं है तो उस तरह बनने का प्रयास भी हमें वहां ले जाएगा, उसमें भी कोई विफलता नहीं। तो शुद्ध भक्ति और शुद्ध भक्ति का प्रयास दोनों एक ही है। तो हमें चाहिए कि हम लोग उसी प्रयास में, उसी चीज में फोकस रहें, और जब जब अपना फोकस हटाएंगे तो डिविएशन है, भ्रमित होंगे मार्ग से, और उतना लंबा समय भी लगेगा जब जब लक्ष्य से भ्रमित होंगे। इसलिए लक्ष्य की तरफ फोकस रहने के लिए व्यक्ति को चाहिए अपनी मॉर्निंग साधना, मॉर्निंग प्रोग्राम, भक्तों का संग, ये पंचांग भक्ति का जो अंग है, नियमित रूप से इसका पालन करें। और इसका पालन करने का सबसे बड़ा फायदा जो हमने बताया पूरे का पूरा सिस्टम में, और कमजोरी क्या है इसको ना करने की, ये भी सुबह से शुरुआत होती है, क्योंकि हम लोग सतोगुण में नहीं। मॉर्निंग प्रोग्राम का मतलब ही है कि आप सतोगुण में आने की तैयारी कर रहे हैं, और सतोगुण में आना भी जीवन का लक्ष्य नहीं है, ये भी कंडीशनिंग है, सतोगुण से भी ऊपर उठना है। लेकिन कम से कम सतोगुण में चीजें समझ आने लग जाती है, प्रकाश ज्ञान आता है। तो जब व्यक्ति का मॉर्निंग प्रोग्राम ही ठीक नहीं है, डेली में से ठीक नहीं, तो फिर सारी चीजें खराब है। जैसे कि स्कूल में मैथमेटिक्स का जो क्वेश्चन करते हैं तो एजम्पशन लेते हैं कि एक्स का मान इतना ले लिया जी, जब वही गलत ले लिया तो फॉर्मूला बेशक ठीक लगाओ, आप कैलकुलेशन बेशक ठीक करो, कैलकुलेटर से करो, आप कंसंट्रेशन बेशक पूरा रखो, आंसर कभी ठीक नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि एजम्पशन गलत, गलत चीज मान ली, मान गलत ले लिया। तो अगर हमारा शुरुआत ही दिन की इन सब चीजों से होती है, दूसरी चीजों से होती है, तो बड़ा मुश्किल है। तो इसलिए सतोगुण वाले समय में ही हम लोग चाहें तो इन पंचांग भक्ति का रेगुलर बेसिस अच्छे ढंग से उसका पालन करके, तो निश्चित रूप से बाकी चीज़ों पे ध्यान देना है और क्वालिटी पे ध्यान देने की अगर फॉलो हो जाए। लेकिन हम लोग देखेंगे कि केवल मॉर्निंग प्रोग्राम को अच्छा स्ट्रांग करने से, भगवत श्रवण जो हमारी रीडिंग है, एक घंटा रीडिंग मिनिमम, चैंटिंग प्रॉपरली, हियरिंग हर चरण, वही हमको धीरे धीरे आगे पहुंचाए। लगेगा हमको कि नहीं हो रहा, बहुत दिन हो गया ऐसा कुछ, क्योंकि बहुत कुछ जन्म के अनर्थ हैं, लेकिन नहीं, रास्ता तो यही है, कुछ और रास्ता नहीं। ये सोच कर कि लंबा रास्ता है, आ नहीं रहा, वापस मंजिल नहीं आ रही, तो यू टर्न लेने का फायदा नहीं, या लेफ्ट और राइट जाने का भी फायदा नहीं। लेफ्ट जाएंगे या राइट जाएंगे तो भी टर्न लंबा हो गया, डिस्टेंस लंबा हो जाएगा। यू टर्न ले लेंगे तो बिल्कुल ही उल्टे हो गए। एक ही ऑप्शन है, आगे बढ़ते चलो। दैट्स ठीक है। हरे कृष्ण।